पाकिस्तान आर्मी कैंप में अफरा-तफरी का माहौल था। कैप्टन अहद के कॉल के बाद सभी तैयार होकर आर्मी कैंप जाने के लिए निकल गए थे। साथ ही वहां आपस में कानाफूसी का माहौल बन गया था। आर्मी कैंप में हथियार ले रहे सैनिक उन सबको इस बारे में बता रहे थे जिन्हें कुछ पता नहीं था। आर्मी कैंप से दूर आदम और साद इस वक्त मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। पूरी रात और आधा दिन ड्यूटी करने के बाद दोनों काफी थके हुए थे। आदम ने गहरी सांस लेकर साथ से कहा, मुझे नहीं पता था कि कैप्टन साहब की छुट्टियों की भरपाई हमें करनी होगी, वरना हम उन्हें कभी नहीं जाने देते। बस भी करो यार, इसी बहाने वो मासूम लड़की अपने वतन वापस लौट पाएगी। तुमने देखा नहीं पूरे दिन कैसे मुंह बनाकर घूमती रहती है। अब तो यही दुआ करो कि कैसे भी करके वो अपने अब्बू को मना ले। आदम ने जवाब दिया और फिर अपने दोनों हाथ दुआ में उठा लिए थे। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। वैसे ये मेले में जाने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? इससे अच्छा हम कई घंटे की नींद लेते, फिर रात को ड्यूटी पर फिर से लगना है, याद नहीं क्या? चलते हुए साद ने मुंह बनाकर कहा। जिंदगी भर ड्यूटी करनी है, थोड़ा सा मौज मस्ती कर भी लें तो क्या दिक्कत है। ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, बस 2-3 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, फिर भी सोने के लिए काफी सारा टाइम बचा रहेगा, आदम ने जवाब दिया। आदम और साद बातें करते हुए चल रहे थे, तभी एक सोल्जर उनके पास आया और बोला, तुम दोनों घर जा रहे थे ना, बदकिस्मती से अब घर जाने को नहीं मिलेगा। सुना है एक इंडियन जासूस यहाँ घुस आई है और यहीं कहीं आसपास में रह रही है। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? साद ने हैरानी से पूछा। ईशानी भी इंडिया से आई थी लेकिन उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, आदम ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। अरे, इन्होंने कौन सा उसे देखा है जो उसके बारे में पता होगा। चलो चलते हैं मिशन पर, बाकी चीजें बाद में आती हैं, हमने आर्मी मौज मस्ती करने के लिए ज्वाइन नहीं की थी। आदम का जज्बा देखकर साद भी जाने के लिए तैयार हो गया। वो दोनों फिर से अपनी गन लेने के लिए जा रहे थे, तभी अचानक साद को कुछ एहसास हुआ और वो बोला, आदम, अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई है, कहीं हमारे घर में रह रही लड़की इन लोगों के नज़रों में तो नहीं आ गई है ना? साद के कहते ही आदम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो जल्दी से उस सोल्जर के पास गया और हल्का हाँफते हुए बोला, अच्छा, तुम जिस जासूस की बात कर रहे हो वो कहाँ मिली है, किसने देखा है उसे? कैप्टन अहद का कॉल आया था। गनीमत देखो, वो लड़की किसी आर्मी कैप्टन के यहाँ रह रही है, जरूर उसे बेवकूफ बनाया होगा। अफसोस तो मुझे उस कैप्टन पर हो रहा है जो इस हनी ट्रैप में फंस गया, उस सोल्जर ने हल्के गुस्से में कहा। उसकी बातें सुनकर आदम और साद की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, उन्हें ईशानी की फिक्र सता रही थी। आदम अपना मोबाइल निकालने को हुआ, तभी सोल्जर ने उससे कहा, ऐसे वक्त में भी तुम्हें अपने घर वालों को इन्फॉर्म करने की सूझ रही है, चुपचाप हमारे साथ चलो, देश पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तुम्हें मोबाइल चलाना है। वो सोल्जर पोजीशन में उनसे बड़ा था तो आदम और साथ कुछ नहीं कर पाए। उन दोनों ने उसे सैल्यूट किया और उसके पीछे जाने लगे। वो वैन में थे और जैसे जैसे गाड़ी जैन के घर की तरफ बढ़ रही थी उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। जैसे ही वैन कैप्टन जैन के घर के आगे रुकी, आदम और साथ का कलेजा मुंह को आने को हो गया। साथ ने आदम के पास आकर दबी आवाज में कहा, हमें बहुत डर लग रहा है आदम, कैप्टन सर भी घर पर नहीं है, ऊपर से मुझे लगता है कि डॉक्टर जन्नत भी ड्यूटी पर चली गई होगी, ऐसे में ये लोग ईशानी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। डर तो मुझे भी लग रहा है लेकिन हम सिर्फ दो हैं और ये लोग इतने सारे, इन लोगों के बीच हमें उन्हें आगाह करने का भी मौका नहीं मिला। अब तो बस यही दुआ है कि अगर जिंदगी में कोई भी अच्छा काम किया है तो उसका सबब आज ही मिल जाए और अल्लाह उस बेगुनाह लड़की को इन जल्लादों से बचा ले। आर्मी के आते ही वहां का माहौल गर्म हो गया था और भीड़ इकट्ठा हो गई। आसपास के लोग ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे कि आखिर वहां चल क्या रहा है, कैप्टन जैन के घर को उन लोगों ने इस तरह क्यों घेर रखा था। वहीं आर्मी के आते ही अहद ने उन सबको ऑर्डर देते हुए कहा, हमने सब पता कर लिया है, ये कैप्टन जैन का मकान है, आप इसे चारों तरफ से घेर लें ताकि वो लड़की बाहर ना निकल सके, हमें डर है कि उसके पास हथियार या दूसरे विस्फोटक सामग्री हो सकती है। ऐसा कीजिए कि आप भी ग्रेनेड और अपनी गन लोड करके तैयार रहें, अगर थोड़ी सी भी हरकत हो तो शूट कर दीजिएगा, याद से उन्हें जान से नहीं मारना है, बस घायल करना है। यस सर, सभी एक सुर में बोले। आर्मी अंदर जाने के लिए लगभग तैयार हो ही रही थी कि तभी जैन वहां पर अपनी गाड़ी के साथ आया। उसे पता नहीं था कि आखिर उसके घर पर चल क्या रहा है, इतनी सारी आर्मी वहां पर क्यों आई हुई है। जैन जल्दी से अहद के पास गया। अहद ने जैन को गुस्से में घूरते हुए कहा, कैप्टन जैन, आपका फैसला भी किया जाएगा, आखिर आप एक जासूस को अपने घर में पनाह दे भी कैसे सकते हैं? क्या आपने अपने उसूल और वतन के प्रति जो जज्बा है उसे भूल गए थे जो एक दुश्मन को अपने घर पर रखा है? आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैन ने अनजान बनने का दिखावा करते हुए पूछा। हम आपसे बहस करने में अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद जब वो लड़की आपके घर से पकड़ी जाएगी उस वक्त पूरे सबूत के साथ आपको भी जनरल के सामने पेश किया जाएगा, उम्मीद है तब तक आप हमारे इस मिशन में टांग नहीं अड़ाएंगे, अहद ने गुस्से में जवाब दिया। कम ऑन, बी रेडी सोल्जर्स, अहद ने तेज आवाज में कहा और उन लोगों को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। इस वक्त जैन के माथे पर परेशानी से पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसने साद और आदम की तरफ देखा, उनके चेहरों का रंग भी उड़ा हुआ था और इस वक्त वो कुछ नहीं कर पा रहे थे सिवाय पाकिस्तानी आर्मी का साथ देने के।